आरवी अपने रूम में बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी और तकिए में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। एक बार फिर उसे कल रात की सभी बातें याद आ गई थीं। कितनी जिल्लत सही थी कल उसने। दर्द आंसुओं बनकर बहने लगा था। अचानक ही उसे अपने सर पर ममता भरे स्पर्श का एहसास हुआ। वो पल में पहचान गई कि अर्पिता जी यहां आई हुई हैं। उसने अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछ लिया, फिर उठकर ठीक से बैठते हुए उन्हें देखते हुए बोली, बड़ी माँ आप यहां? कुछ काम था? अर्पिता जी कुछ पल उसके उदास मुरझाए चेहरे को देखती रहीं, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर दुखी स्वर में बोली, आपको हमसे अपना दर्द छुपाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, हम भी एक औरत हैं, आपको अपनी बेटी माना है हमने, आपके दर्द को बखूबी समझ सकते हैं हम। हम जानते हैं शान ने जो आपके साथ किया उससे आपके मन को बहुत चोट पहुंची है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। गुस्सा और नफरत इंसान के विवेक को हर लेता है, इसीलिए अभी उन्हें एहसास नहीं कि कितना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने, पर एक ना एक दिन उन्हें अपने गुनाह का एहसास जरूर होगा और तब वो आपसे अपने किए की माफी भी मांगेंगे, ये विश्वास है हमारा। पर अभी उनसे हमें इसकी उम्मीद नहीं, वो बचपन से ही ऐसे हैं, अपने गुस्से के आगे उन्हें और कोई नजर नहीं आता। पर हम आपको ये सब बताकर उनकी गलती को सही नहीं ठहरा रहे, बस आपको बता रहे हैं कि वो ऐसे नहीं हैं। तो आप उम्मीद मत छोड़िएगा, इंतजार कीजिएगा उनके गुस्से के ठंडा होने का। अभी शान खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने जो किया वो गलत था और उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं बेटा, माफ कर दीजिए हमें। हम आपको इस घर में बहू बनाकर लाए थे, पर आपको यहां कोई खुशी नहीं दे सके। शुरू से लेकर आज तक शान की तरफ से आपको दर्द और जिल्लत ही मिली और हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सके। उनसे बड़े गुनाहगार हम हैं आपके, माफ कर दीजिए हमें। जो आपने सहा और जिस दर्द में अभी आप हैं, हम उसे कम नहीं कर सकते, पर अपने लिए इस गलत फैसले के लिए आपसे माफी मांगते हैं। हमें आपकी शादी शान से नहीं करवानी चाहिए थी। अगर तब आप बिन ब्याही रह जाती तब भी आपको इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता जितना शान से शादी के बाद आपको उनकी वजह से होना पड़ा। शायद अगर आपकी शान से शादी नहीं हुई होती तो आप एक बेहतर और इज्जत भरी जिंदगी जी रही होती। हमारे लिए एक गलत फैसले ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमें माफ कर दीजिए बेटा। अर्पिता जी ने आरवी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और शान की हुई हरकत पर शर्मिंदगी से उनका सर झुक गया। इतने वक्त में पहली बार उन्होंने शान से उसकी शादी करवाने वाले फैसले पर अफसोस जाहिर किया था, और यही ये बताने को काफी था कि शान की हरकत ने उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई है। आरवी ने उन्हें यूं हाथ जोड़कर माफी मांगते देखा तो तुरंत ही उनकी हथेलियों को अपनी हथेलियों से थामकर नीचे करते हुए बोली, ये आप क्या कर रही हैं बड़ी माँ? आप यूं माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हैं? मेरे साथ जो भी हो रहा है उसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने जो भी किया मेरे भले के लिए ही किया था, दोष आपका नहीं, मेरे नसीब का है जो मुझे कभी खुशी नहीं मिलती। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो मेरी किस्मत में लिखा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। मुझे आपसे या घर में किसी से कोई शिकायत नहीं। आप सबने तो मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है, पर जिनकी जिम्मेदारी थी मेरी अस्मिता की रक्षा करना, वही अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूं कि वो ऐसे नहीं है, पर अभी उनका गुस्सा उन पर हावी हो गया है। गलत उन्होंने किया है मेरे साथ, और मुझे पता है कि एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का। मुझे आप में से किसी से कोई शिकायत नहीं। अगर किसी से नाराजगी है तो वो उनसे है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। गलती जिसकी है माफी भी उसी को मांगनी चाहिए बड़ी माँ। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आरवी उनकी हथेलियों को अपने सर से लगाए फपक कर रो पड़ी। उसका दर्द देखकर अर्पिता जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने आरवी को अपने सीने से लगा लिया। माँ का स्नेह मिला था उसे अर्पिता जी से, इसीलिए वो उनके सीने से लगी अपना दर्द आंसुओं के जरिए बाहर निकालने लगी। कुछ देर तक आरवी यूं ही उनके सीने से लगी रोती रही, फिर उनसे दूर हटते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और भीगी निगाहों से उन्हें देखते हुए बोली, बड़ी माँ, एक वादा करेंगी मुझसे? बड़ी माँ ने तुरंत ही प्यार से उसके गाल को छूते हुए हामी भरते हुए कहा, हाँ कहो बेटा, इस बारे में आप उनसे कुछ भी नहीं कहेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप सबके रिश्ते में दरार आए। उन्होंने गलत मेरे साथ किया है तो उनसे नाराज होने का हक भी सिर्फ मेरा है। प्लीज आप सब उनसे नाराज मत होइएगा, वरना मेरे लिए उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी यहाँ दोषी एक बेटा या पिता नहीं बल्कि एक पति है, तो उसे क्या सजा देनी है ये फैसला लेने का हक सिर्फ उसकी पत्नी का है। ये जो भी हमारे बीच हो रहा है वो पति पत्नी की बात है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी आए। ये रिश्ता हमारा है तो इसे कैसे संभालना है ये हमें ही देखने दीजिए। आप सब बीच में कुछ मत कहिएगा, वरना बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस बात के लिए उन पर नाराज मत होइएगा। अर्पिता जी की आंखें छलक आईं। इतना दर्द सहने के बाद भी वो उन सबके और शान के बारे में सोच रही थी, और शान उससे नफरत निभा रहा था। ये सोचते हुए उनका चेहरा दर्द से सन गया। उन्होंने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम में से कोई अब इस मामले में और आप दोनों के बीच कुछ नहीं बोलेगा। आपको उनके गुनाह की उन्हें जो भी सजा देनी हो दे दीजिएगा। हम में से कोई भी आपके और उनके बीच में नहीं आएगा, पर अगर शान ने दोबारा आपके साथ ऐसा सुलूक किया तो हम चुप नहीं रहेंगे। आरवी के लबों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसने सर हिलाते हुए कहा, पर दोबारा ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। अर्पिता जी हल्के से मुस्कुरा दी, फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, भगवान आपकी जिंदगी से सब दुख तकलीफ दूर करे और आपको वो खुशी दे जो आज तक आपको नहीं मिल सकी। चलिए हम जाते हैं, आप जल्दी नीचे आ जाइएगा, अंशु उठने ही वाली होगी, हम जरा उन्हें देख लें। उनका आशीर्वाद सुनकर आरवी की आंखों में नमी उतर आई, जिसे छुपाते हुए उसने अपनी निगाहों को झुका लिया और हाँ में सर हिला दिया। अर्पिता जी समझ रही थी कि इतना आसान नहीं उसके लिए उन बातों को भूल पाना, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और उसके सर को प्यार से चूमते हुए मुड़कर वहां से जाने लगी। अभी वो गेट तक पहुंची भी नहीं थी कि नन्ही अंशु अपनी मम्मा को ढूंढते हुए वहां आ गई। वो अपने नन्हे कदमों से कमरे के अंदर आते हुए आरवी को पुकार रही थी। आरवी के कानों में जैसे ही अंशु की आवाज पड़ी, उसने तुरंत ही गेट की तरफ निगाहें घुमा ली, जहां से अंशु चली आ रही थी। उसके हर दर्द की जैसे दवा मिल गई थी उसे। आरवी ने झट से अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछ लिया और बेड से उतरते हुए व्याकुल कदमों से अंशु की तरफ बढ़ गई। उसके सामने जाकर वो घुटने के बल बैठ गई और उसको अपने सीने से लगा लिया। उसके स्पर्श मात्र से उसे अपने हर दर्द से निजात मिल गया था। अंशु अभी अभी सोकर उठी थी तो उसके घुंघरेले बाल उसकी पीठ और चेहरे पर फैले हुए थे। अंशु ने अपनी हथेलियों से अपने आंखों पर आते बालों को पीछे करते हुए शिकायती लहजे में कहा, मम्मा आप बेबी को अलोन छोड़कर कहाँ चली गई थीं? बेबी ने आपको बहुत ढूंढा पर आप नहीं आई। बेबी ने मम्मा को इतना सारा मिस किया। आरवी की आंखों में नमी उतर आई और लबों पर मुस्कान काबिज हो गई। उसने अंशु को खुद से दूर किया, फिर उसके छोटे से चेहरे पर फैले बालों को अपनी हथेलियों से पीछे करते हुए बड़े प्यार से बोली,
मम्मा काम से गई थी बेटा और मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया। आगे से मम्मा आपको भी अपने साथ लेकर चलेगी। अंशु ने तुरंत ही सर हिला दिया, फिर उसे लिपटते हुए बोली, अब बेबी मम्मा को कहीं जाने नहीं देगी। आरवी की मुस्कान गहरी हो गई। उसने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मम्मा अब दोबारा आपको छोड़कर कहीं जाएंगी भी नहीं बेटा। कल की बात याद करते हुए एक बार फिर वो इमोशनल होने लगी थी, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा बेटा, जरा मम्मा को बताइए, कल आपने बड़ी दादी और दादू को ज्यादा तंग तो नहीं किया? अंशु उससे अलग हुई, तुरंत ही इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नो मम्मा, बेबी गुड गर्ल बन गई है ना, अब वो किसी को भी तंग नहीं करती। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर आरवी ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा समझदार बच्चा, चलो मम्मा आपको स्कूल के लिए रेडी कर देती है। आरवी अंशु को लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद उसने अंशु को तैयार किया, फिर ब्रेकफास्ट के लिए उसे लेकर नीचे चली आई। ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका था पर अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया था। छाया ने उसे शान के जाने की बात बता दी थी, जिस पर आरवी ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। अर्पिता जी को उसने सुयश जी को बुलाने के लिए भेज दिया, फिर अंशु को छाया के पास रुकने को कहकर खुद सुभाष जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूम में कदम रखा तो सुभाष जी रूम में बनी बड़ी ही विंडो के पास अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे। रूम में बस लैंप की हल्की सी रोशनी ही मौजूद थी। आरवी ने अंदर आते ही रूम की लाइट्स चला दी और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, डैड नाश्ते का वक्त हो गया और आप अब तक यहाँ बैठे हैं, आज ब्रेकफास्ट नहीं करना आपको?
आरवी एकदम सामान्य व्यवहार कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से घर का माहौल बिगड़े। आरवी की आवाज सुनकर सुभाष जी ने सर घुमाकर देखा तो आरवी उनके पास आ चुकी थी। भले ही अब वो रो नहीं रही थी, पर उसकी लाल हल्की सूजी आंखें उसके दर्द की गवाही दे रही थी। आरवी को देखते ही सुभाष जी को वो वीडियो याद आ गया और शर्मिंदगी से उनका सर झुक गया। हमें भूख नहीं बेटा, आप जाकर खा लीजिए, हमें कुछ देर अकेले रहना है। शायद वो आरवी से बात तक करने से कतरा रहे थे। आरवी ने उनका जवाब सुना तो उनके सामने बैठ गई और उनके हाथ को थामते हुए बोली, क्यों रहना है आपको अकेले, और भूख कैसी नहीं आपको? आपको पता है ना कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो दवाई नहीं ले सकेंगे, और अगर दवाई नहीं लिए तो जल्दी से ठीक कैसे होंगे? टू बी कंटिन्यूड। जानती हूँ शान के व्यवहार और आरवी की खामोशी से आप काफ़ी नाराज़ होंगे, और बदले में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे अब तक सब्र रखकर इस कहानी को पढ़ा है, आगे भी पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं अपने हर किरदार के साथ न्याय ज़रूर करूँगी और आपकी नाराज़गी भी आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी।